श्रोता नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु। तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु, प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु। मसीह प्यार का तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू प्रभु तेरी सच्चाई मुझ में हो। तू है मसीह प्यार का तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू प्रभु तेरी सच्चाई मुझ में हो। यीशु तेरी रूह से मुझे भर दे प्रभु, यीशु तेरी रूह से मुझे भर दे प्रभु, तू आशीष मुझको 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 दे प्रभु। तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु, तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, ही तेज मुझ में हो प्रभु।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय मित्र और परिवार के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो बाइबल का अंतिम पुस्तक है। तो मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबों को दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर बैठ करके एक साथ कर सकते हैं। पिताजी, हमारी प्रार्थना है हमारे हर एक श्रोता भाई बहनों के लिए जो रेडियो के निकट बैठे हैं। विनती करते हैं कि आज के अध्ययन के लिए आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब वे आपके वचन में से सुनते हैं तो होने दे कि आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, उनके हृदय को छूने पाए। हमारे विनती है उन भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन से निराश हैं और आत्महत्या करने की योजना बना रहे हैं या पारिवारिक स्थिति को देख करके निराश होकर के कुछ ऐसे कदम उठाने की योजना बना रहे हैं जो उचित नहीं है। विनती है प्रभु, ऐसे प्रियों को आप छुएं ताकि वे इस बात को समझने पाएं कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं। ये संसार उन्हें छोड़ सकती है, भाई बहन माता पिता छोड़ सकते हैं, परंतु आप उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि आपने उन्हें रचा है और आप चाहते हैं कि वे आपके प्रेम को पहचाने। आज के वचन के द्वारा आप उन्हें शांति दें, हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देख रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले अध्ययन में देखा कि जब छठवीं तुरही फूंकी गई तब वेदी के मध्य भाग से प्रभु यीशु ने पुकार कर कहा कि फुरात नदी पर बंधे चार स्वर्गदूतों को खोल दिया जाए। इन स्वर्गदूतों को 20 करोड़ की सेना देकर मनुष्यों का नरसंहार करने के लिए रखा गया है। उन घोड़ों के मुंह से निकलने वाली आग, धुआं और गंधक से एक तिहाई मनुष्य मारे गए। ऐसा संहार देखकर मनुष्यों ने मूर्ति पूजा और बुरे कामों से मन फिराया। अब छठवीं और सातवीं तुरहियों के फूंके जाने के मध्य अन्य विषय आते हैं, तो आइए अब हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 10 अध्याय जिसका विषय है छठवीं और सातवीं तुरहियों के मध्य अन्य विषय। 10वां अध्याय छठवीं और सातवीं तुरहियों के मध्य चर्चा के विषय में परिवर्तन लाता है। यह अध्याय मध्य वार्ता के क्रम में दूसरा है। छठवीं और सातवीं मुहर के मध्य दो समूहों की चर्चा की गई थी जिनका उद्धार करके उनके ऊपर मुहर लगाई गई थी। यहां छठवीं और सातवीं तुरहियों के मध्य तीन व्यक्तित्वों की चर्चा की गई है। इस अध्याय में एक सामर्थ्य स्वर्गदूत का उल्लेख किया गया है। अध्याय 11 के पहले 14 पदों में दो गवाहों की चर्चा की गई है जिनके नाम नहीं दिए गए हैं। एक छोटी पुस्तक के साथ सामर्थी स्वर्गदूत, पद 1 में स्वर्ग से एक सामर्थी स्वर्गदूत आता है। तो आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 10 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। मेरे प्रियो, बाइबल के टीकाकारों में विशेष करके प्रसिद्ध टीकाकारों में इस सामर्थ्य स्वर्गदूत की पहचान के बारे में मतभेद है। कुछ के अनुसार यह सामर्थ्य स्वर्गदूत प्रभु यीशु है और अन्यों के अनुसार वह अधिकार और प्रभुता संपन्न एक स्वर्गदूत है, प्रभु यीशु नहीं है। परंतु मेरा मानना है कि वह एक सामर्थ्य स्वर्गदूत है। पहले विचारक समूह की बात मानने में कोई भी बुराई नहीं है, परंतु सच्चाई के लिए आपको मेरी बात मानना होगा। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु कहीं भी स्वर्गदूत के समान नहीं है। निसंदेह पुराने नियम में देह धारण से पूर्व प्रभु यीशु परमेश्वर का स्वर्गदूत था, परंतु देह धारण के बाद वह मरकर फिर जी उठा और उसे महिमामय देह दी गई है। इस समय वह महान अधिकार एवं महिमा में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। अब वह स्वर्गदूत के समान दिखाई नहीं देता है। जी हाँ, वह मानव देह में स्वर्गदूत नहीं, मनुष्य था। अतः प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वह महिमामय प्रभु यीशु मसीह है। वह सर्वोच्च महिमा में है। हमें यह स्मरण रखना उचित होगा कि यह पुस्तक प्रभु यीशु का अनावरण है। प्रत्येक अध्याय में उसके व्यक्तित्व, सामर्थ और कार्यों का एक नया महिमान्वयन प्रकट किया जा रहा है। इसमें वह प्रभु यीशु का इनकार करने वाले संसार का न्याय कर रहा है। लिखा है, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा। एक और स्वर्गदूत से अर्थ है कि एक को हमने पहले देखा है, अर्थात अध्याय 5:2 में। वह प्रभु यीशु नहीं था। उसकी पोशाक के कारण भ्रम होता है कि वह प्रभु यीशु है, यद्यपि सब स्वर्गदूत प्रभु यीशु के सेवक हैं। बाइबल की अंतिम पुस्तक में यह स्वर्गदूत प्रभु यीशु का विशेष दूत है, जो अपने ऊंचे पद के योग्य प्रमाण लिए हुए है। वह स्वर्ग में प्रभु यीशु की उपस्थिति से आता है। प्रभु यीशु सिंहासन पर विराजमान है। यहां पर हम देखते हैं लिखा है, बादल ओढ़े हुए। यह उस विशेष दूत की पोशाक है। महिमा के बादल प्रभु यीशु के पुनः आगमन से संबंधित हैं। यहां यह स्वर्गदूत महिमा के बादल में नहीं, केवल एक बादल में लिपटा हुआ आता है। इसके अतिरिक्त यह प्रभु यीशु का दूसरा आगमन नहीं है, जब वह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। यह स्वर्गदूत तो प्रभु यीशु के आगमन की घोषणा करता है। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु के प्रथम आगमन की घोषणा स्वर्गदूतों ने की थी और उसके दूसरे आगमन की घोषणा भी स्वर्गदूतों ने ही किया है और करेंगे। लिखा हुआ है, उसके सिर पर मेघ धनुष था। यह उसकी टोपी थी जो मनुष्य के साथ बांधी गई परमेश्वर की वाचा का स्मरण करवाता है। यद्यपि अलौकिक एवं रहस्यमय दंड आते हैं, उनके वर्णन करने के लिए भाषा की आवश्यकता है। इस मेघ धनुष का अर्थ है कि इस बार परमेश्वर जल प्रलय का दंड नहीं देगा। तब आगे लिखा है, उसका मुंह सूर्य के समान। यह उसकी पहचान का चिन्ह है। यह महिमामय प्रभु यीशु का हस्ताक्षर है। देखें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 16 पद में। मेरे प्रियो, इसका अर्थ यह नहीं कि वह परमेश्वर का पुत्र है। निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय के 29 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के कारण मूसा का चेहरा चमकने लगा था। इस स्वर्गदूत का चेहरा चमक रहा था क्योंकि वह प्रभु यीशु की उपस्थिति में से आया था। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु के जी उठने के बाद कब्र पर बैठे हुए स्वर्गदूत के वस्त्र चमक रहे थे। आप पढ़ सकते हैं लुकार्चित सुसमाचार 24 अध्याय के 4 पद में। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18:1 में, जो स्वर्गदूत है वह सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान है। परंतु उसे प्रभु यीशु कोई नहीं कहता है। और मैं मानता हूं कि अध्याय 10 का यह स्वर्गदूत भी प्रभु यीशु नहीं है। यूहन्ना कहता है कि वह एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत है। लिखा है उसके पांव आग के खंभे के समान थे, यह भी उसकी वर्दी ही है। वह दंड के विशेष एवं पावन घोषणा करने के लिए आया है। उसकी पहचान के ये सब लक्षण उसके प्रमाण हैं कि वह प्रभु यीशु का विशेष दूत है। इस समय प्रभु यीशु हर एक घटना का संचालन कर रहा है। जी हाँ, वह संपूर्ण पृथ्वी पर न्यायी है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 10 अध्याय उसके 2 और 3 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए। मेरे प्रियो, हम लोग देख रहे हैं कि इसके अनेकों कारण हैं, और अनेक कारणों में से मैं कह सकता हूं कि यह पुस्तक वही पुस्तक है जिसे हमने पहले 7 मुहरों में बंद देखा था। एक सीधा सा कारण तो यह है कि हमारे सामने केवल यही एक पुस्तक है जिसके लिए छोटी पुस्तक की अपेक्षा अन्य कोई नाम नहीं है। यद्यपि मूल भाषा में इस पुस्तक के लिए दूसरा शब्द काम में लिया गया है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि यह वही पुस्तक नहीं है। मेरे प्रियो, यदि यह छोटी पुस्तक वही पुस्तक है तो 7 मुहरों में बंद थी, तो वह आरंभ में परमेश्वर के हाथ में थी। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 पद में इसे देख चुके हैं। यहां इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि यह पुस्तक पुत्र परमेश्वर के कील से छिदे हुए हाथों में कैसे आई और उसे कैसे ले ली गई। वह प्रभु यीशु के हाथ में थी। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, वह प्रभु यीशु को इसलिए दी गई थी कि उसे खोलने के योग्य केवल वही था। 7 मोहरों के तोड़ने पर वह पुस्तक खुल गई और 7 तुरहियां जिनमें से 6 फूंकी जा चुकी हैं इसी पुस्तक के विषय में है। मोहरें खोलने के बाद प्रभु यीशु वह पुस्तक इस स्वर्गदूत को दे देता है और वह स्वर्गदूत यूहन्ना को यह पुस्तक देता है कि वह उसे खा ले। यह पुस्तक पृथ्वी का पट्टा है और इसमें महाक्लेश के दंड हैं जिनके द्वारा प्रभु यीशु सत्ता अपने हाथ में लेता है। यह पुस्तक अब खुल गई है और दंड प्रकट हो रहे हैं। मेरे मित्रों, यह पुस्तक उस स्वर्गदूत का अधिकार पत्र है कि वह समुद्र और पृथ्वी को प्रभु यीशु के लिए अधिकार में ले। वह एक पांव समुद्र पर और एक पांव पृथ्वी पर रखकर परमेश्वर के लिए इसे अधिकार में लेता है। हम लय व्यवस्था की पुस्तक 25 अध्याय के 23 पद में इसे पढ़ते हैं। परमेश्वर ने इसराइल को प्रतिज्ञा के देश से संबंधित निर्देश दिए थे, भूमि सदा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होगे। आपने पैसा देकर जमीन का पट्टा अपने नाम करवा लिया होगा। आप सोचते होंगे कि वह जमीन आपकी है, परंतु सच तो यह है कि यह भूमि परमेश्वर की है, और आप चाहे जो भी हैं, आपने परमेश्वर को उसकी कीमत नहीं चुकाई है। भजन संहिता 24:1 में लिखा है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। जी हाँ, पृथ्वी ही नहीं समुद्र भी परमेश्वर का है। भजन संहिता 8:6-8 में लिखा हुआ है, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है, सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, मैं भूमि और समुद्र का स्वामी हूँ और मैंने ही तुम्हें यह धरती अर्थात पृथ्वी दी है। मैंने मनुष्य को पृथ्वी पर रखा है। मनुष्य इस पृथ्वी पर किराएदार है। हम परमेश्वर द्वारा सृजित इस छोटे संसार में रहते हैं। यह संसार परमेश्वर का है। मनुष्य उसे इसका मूल्य चुकाने के योग्य अभी नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, यह स्वर्गदूत प्रभु यीशु के लिए समुद्र और धरती पर अधिकार करता है। पूर्व काल में जब कोई किसी देश की खोज करता था, तब वह वहां अपने देश का झंडा गाड़ देता था, अर्थात वहां उसका अधिकार हो गया। इसी प्रकार एक पांव समुद्र पर और एक पांव धरती पर रखकर पट्टे की पुस्तक अपने हाथ में लेकर वह स्वर्गदूत संपूर्ण पृथ्वी पर प्रभु यीशु के अधिकार की घोषणा करता है। इस संसार के राज्य सब प्रभु यीशु के दंड के द्वारा उसके अधीन हो जाएंगे। सृजनहार और तारणहार होने के कारण यह संसार उसी का है। मेरे मित्रों, इस पुस्तक को छोटी पुस्तक कहा गया है क्योंकि महाक्लेश का समय लंबा नहीं होगा। हम लगभग आधे समय पार तो कर चुके हैं और हमें कहा जाएगा कि अब अधिक समय नहीं रहा है, अधिक लिखने का विषय नहीं है। यह एक छोटी पुस्तक है। रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसके 28 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। महाक्लेश वास्तव में अल्पकालीन होगा। प्रभु यीशु ने कहा था कि यह समय घटाकर कम किया गया है। दानियल नबी की पुस्तक में दानियल ने इसे 7 वर्ष का समय कहा है, जो लंबा समय नहीं है। तब हम देखते हैं लिखा है गर्जन के 7 शब्द। स्वर्गदूत की बात पर परमेश्वर के आमीन का शब्द भजन संहिता 29 उसके 3 में लिखा है, यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। और तब अय्यूब की पुस्तक 37 अध्याय के 5 पद में लिखा है, परमेश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। किसी सिद्धस्थ व्यक्ति ने कहा है, यहूदी गर्जन को 7 शब्द कहने के अभ्यस्त थे। यद्यपि भजन संहिता 29 एक छोटा भजन है, परमेश्वर की वाणी 7 बार सुनाई देती है। इसराइल गर्जन को परमेश्वर का शब्द 7 शब्द कहता है। मेरे प्रियो, हमें वचन को काट छाट कर भविष्यवाणी में बैठाने की अपेक्षा उनका अभिप्राय समझने का परिश्रम करना चाहिए। एक महिला जूता खरीदने के लिए गई। दुकानदार ने पूछा, आपका नाप क्या है? उसने कहा, मैं 4 नंबर पहन सकती हूँ, जबकि मेरा नाप 5 नंबर का है, परंतु 6 नंबर से मुझे बहुत आराम मिलता है, इसलिए मैं 6 नंबर ही खरीदती हूँ। इसी प्रकार बाइबल की व्याख्याएं की जाती हैं। वे धर्मशास्त्र को काट छाट कर किसी भी विचार तंत्र में प्रासंगिक बना देते हैं। योहना को आप कहने दें, यहां 7 गर्जन के शब्द परमेश्वर की वाणी है। मेरे विचार में यह प्रभु यीशु की स्वर्गिक वाणी है। वह स्वर्गदूत की घोषणा का अनुमोदन करता है क्योंकि वह इस पृथ्वी की सत्ता अपने हाथ में ले लेगा। मेरे प्रियो, क्या आज आप सोच रहे हैं कि यह पृथ्वी आपका है? आज मनुष्य चांद को भी अपना कहने लगा है, परंतु ध्यान रखें कि सब कुछ प्रभु यीशु का है। सारी सृष्टि परमेश्वर की है, हमारा कुछ भी नहीं है। उस समय आने वाला है, लेकिन इससे पहले हम इस बात को समझ जाएं कि परमेश्वर का अधिकार इस पृथ्वी पर है, इस राज्य पर है, इस संसार पर है। वही हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आइए इस वचन के प्रकाशन में अपने जीवन को देखें, अपने आप को देखें और इस सत्यता को हम अपने जीवन में ग्रहण करें कि यह मेरा नहीं परंतु परमेश्वर का है। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
पवित्र तू प्रभु, तेरी पवित्रता मुझ में हो। शुद्ध तू प्रभु, तेरी शुद्धता मुझ में हो। पवित्र तू प्रभु, तेरी पवित्रता मुझ में हो। शुद्ध तू प्रभु, तेरी शुद्धता मुझ में हो। तेरा ही रूप सदा हो मुझ में प्रभु, मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु। प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु, तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु।